ये आकाशवाणी है। अब आप कनक लता से समाचार सुनिए। सरकार ने तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग फर्म सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के आदेश में कहा गया है कि निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में लिया गया है। एक रिपोर्ट।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का पक्ष लेने पर भारत ने तुर्की के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया है। देश के विभिन्न संस्थान राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तुर्की के साथ अपने अनुबंधों को समाप्त कर रहे हैं। इस कड़ी में सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। इस कंपनी के लिए सुरक्षा मंजूरी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS महानिदेशक ने प्रदान की थी। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड डायल इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निरंतरता और परिचालन स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाताओं के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है। डायल ने यह भी आश्वासन दिया है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कार्गो और ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए वर्तमान में सेलेवी संस्थाओं के रोल पर मौजूद सभी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नए नियोक्ता के पास स्थानांतरित कर दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
भारत तुर्की संबंधों में आई व्यापक गिरावट के बाद कई प्रमुख भारतीय विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए तुर्की के संस्थानों के साथ अपने अकादमिक समझौते ज्ञापन रद्द कर दिए हैं। हैदराबाद के मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय ने तुर्की में यूनुस एमरे संस्थान के साथ अपने समझौते को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। इससे पहले दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने भी तुर्की में इनोनो विश्वविद्यालय के साथ अपने समझौता को रद्द कर दिया था। पूर्व पेंटागन अधिकारी और अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो माइकल रूबिन ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिए जाने वाले $1 अरब के बेलआउट पैकेज को नहीं रोकने पर अमरीका की आलोचना की है। उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में से एक बताया और उस पर आतंकवाद को सरकारी नीति के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। श्री रूबिन ने तर्क दिया कि मुद्रा कोष के फैसले से अप्रत्यक्ष रूप से चीन को भी लाभ होता है। उन्होंने ऐसे समय में फंड जारी करने की निंदा की जब पाकिस्तान स्थित आतंकियों ने हाल ही में भारत में क्रूर हमले किए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात में भुज के दौरे पर हैं। वे भुज वायुसेना स्टेशन पर वायु योद्धाओं से बातचीत करेंगे और स्मृति वन का दौरा करेंगे। ये 2001 के भुज भूकंप में जान गंवाने वालों की स्मृति में एक स्मारक और संग्रहालय है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमिर ज़ेलेंस्की इस्तांबुल में रूस के साथ शांतिवार्ता में शामिल नहीं होंगे। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए श्री ज़ेलेंस्की ने रक्षा मंत्री रुस्तेम उमेरोव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है। उन्होंने अंकारा में आज होने वाली वार्ता के लिए यूक्रेन की प्रतिबद्धता दोहराई लेकिन रूस के इरादों पर संदेह प्रकट किया। लंदन के उच्च न्यायालय ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। नीरव मोदी वहां की जेल में बंद है और मेहुल चोकसी के साथ मिलकर 13,000 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित है। कान फिल्म महोत्सव में भारत मंडप के उद्घाटन के साथ भारत ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। ये वैश्विक सिनेमा की ओर भारत के बढ़ते हुए महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम में फिल्म निर्माता और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक शेखर कपूर और दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर सहित कई जानी मानी हस्तियां उपस्थित रहीं। 78वें कान फिल्म महोत्सव की शुरुआत मंगलवार को हुई थी। सिक्किम आज अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राजधानी गंगटोक में कई कार्यक्रम और सांस्कृतिक आयोजन किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी सिक्किम के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए राज्य के निरंतर समृद्धि की कामना की है। चुनाव आयुक्त डॉ विवेक जोशी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए 4 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे कल शाम पटना पहुंचे। घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स और निफ्टी कल की तेजी के बाद आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 241 अंक की सुस्ती के साथ 82,290 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।